الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ دکھائیے جیسا کہ وہ واقعی ہے اور اس کی اتباع کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ آپ مجھے باطل دکھائیے جیسا کہ وہ واقعی ہے, یعنی باطل کی سمجھ عطا فرما دیجئے اور اس سے اجتناب کی بھی توفیق آپ ہی عطا فرما دیجئے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی دعا. دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو سب کچھ مانگا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو سب کچھ اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے. دعا ایسے نہیں مانگی جاتی کہ اللہ تھوڑا سا کام آپ کر دیجئے باقی مجھ پر چھوڑ دیجئے. اے اللہ تھوڑا سا کام آپ کر دیجئے باقی مجھ پر چھوڑ دیجئے, باقی میں خود کر لوں گا. ٹھیک ہے, یہ دعا نہیں ہوتی. دعا ایسے نہیں مانگنی. دعا تو پوری مانگنی ہے, سب کچھ ہی دعا کے اندر مانگ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسے دعا مانگنی سکھائی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. ٹھیک ہے, کہ حق آپ ہی دکھا دیجئے مجھے اور اتباع کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرما دیجئے, اور باطل آپ ہی دکھا دیجئے اور باطل سے بچنے کی اجتناب کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرما دیجئے. ٹھیک ہے, یہ بات ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ دعا کے اندر جو ہے نا وہ ہم کمی کوتاہی نہ کریں, اور دعا میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کچھ کم مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے پورا پورا مانگنا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. یہ ہے دعا کی حقیقت. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ دوا. اس کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ دوا, یعنی اسباب کو اختیار کرنا, محنت کرنا, کام کرنا. ٹھیک ہے, اس کو عرف عام کے اندر دوا کہتے ہیں, یا انگریزی میں بولیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مینس. ٹھیک ہے, مینس, اسباب. ٹھیک ہے, اب جب اسباب کی باری آتی ہے نا تو اس میں پھر ہمیں اپنی محنت بھی شامل کرنی ہوتی ہے, اپنی سوچ بھی شامل کرنی ہوتی ہے, اپنی جو ہے وہ فکر اور اپنی محنت اور اپنی صلاحیتیں. یہ سب ہم نے کب کرنی ہوتی ہیں؟ یہ دعا کے موقع پہ کرنی ہوتی ہیں, یہ دعا کے موقع پر نہیں کرنی ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعا ایک الگ چیز ہے اور دوا ایک بعد میں آنے والی چیز ہے, دعا کے بعد جو چیز آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نہ تو دوا نہ تو ہم دعا کے اندر کوئی کمی کریں کہ بھائی آخر کو دوا کے لیے بھی تو کچھ چھوڑ دینا چاہیے نا, سب کچھ دعا میں ہی مانگ لو گے. دوا کے لیے کچھ نہیں چھوڑو گے, اسباب کے لیے کچھ نہیں چھوڑو گے, خود کچھ نہیں کرو گے, سب کچھ اللہ سے ہی مانگ لو گے. ہاں, سب کچھ اللہ سے مانگ لیں گے, اللہ سے مانگنے میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے, سب کچھ اللہ آپ ہی کر دیجئے. ٹھیک ہے, آپ ہی سب کچھ کر دیجئے. صحیح ہے, لیکن اس کے بعد جب دوا یعنی جب اپنے کام کا وقت آیا نا تو اس وقت پھر جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم نے خود کرنا ہے. اس وقت یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو دعا میں اللہ تعالی سے سب کچھ مانگ لیا تھا, اب میں نے کوئی تھوڑی کچھ کرنا ہے, اب میں نے یعنی اب میں کچھ نہیں کروں گا, اب میں کچھ سوچوں گا نہیں, کچھ فکر نہیں کروں گا, کچھ محنت نہیں کروں گا. نہیں, میں نے پھر اس کے بعد جو میرے بس میں ہوا جائز طریقے سے کرنا وہ میں کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن میں حد سے آگے نہیں بڑھوں گا, میں جو ہوں کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, دوا کے اندر کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, بس یہ ہے حقیقت. ٹھیک ہے, تو किसी को कोई सवाल हो उसके ऊपर, कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। बज़ाहिर बड़ी बुनियादी सी बात है, लेकिन काफ़ी इसके अंदर गलत फहमी इंसान को लग जाती है, ठीक है, कि दुआ के अंदर कमी कर रहे हैं, कि कुछ अपने लिए भी छोड़ दो भाई। नहीं भाई, अल्लाह ताला से सब कुछ मांग लेना है, ठीक है। और दूसरी बात फिर दवा की जब आती है, तो दवा के अंदर जो है ना वो, या तो हम बिल्कुल ही कुछ दवा नहीं करते, बिल्कुल ही जो है ना वो सो कॉल्ड तवक्कुल, जो कि असल में तवक्कुल नहीं, झूठ होता है असल में, तो या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, या अगर करने पर आते हैं तो चाहते हैं कि सब कुछ ही खुद कर लें, है ना, हत्ता के जायज हदूद को फलांग करके नाजायज हदूद में आ जाते हैं, नाजायज काम करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हर चीज को उसके मुकाम के ऊपर रखना। अच्छा, तो दुआएं वगैरह मांग करके फिर हमने जो क्लास शुरू करी है अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीके, पिछले कुछ हफ्तों से हम इस टॉपिक पर आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले हजरत हामिद रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा और उसका तरीका ये बयान फरमाया कि भाई तौबा एक ऐसी चीज है कि इससे सब गुनाह माफ हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन तौबा से माफ होते हैं, ठीक है, तौबा करेंगे तब माफ होंगे, तौबा नहीं करे करने से गुनाह माफ 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 नहीं हो जाते, कि तौबा तो करी नहीं थी और गुनाह जो है वो माफ हो गए, ऐसे ही को थोड़ी, ठीक है। तो तौबा करेंगे तो गुनाह माफ होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि पता होना चाहिए कि तौबा क्या चीज होती है, कैसे करनी होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत तफसीली पीछे बात हो चुकी है, अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ ले, ठीक है। आगे अगला हम टॉपिक आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगला यानी हेडिंग, कि फरमाते हैं कि खौफ खुदा और उसका तरीका, खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ और उसका तरीका क्या है। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म फरमाया है कि मुझसे डरो। खौफ खुदा ऐसी चीज है कि आदमी उसकी बदौलत गुनाहों से बचता है, उसका तरीका वही है जो तौबा का तरीका है, कि अल्लाह ताला के अजाब को सोचा करे, जिससे अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है, ठीक है। तो खौफ खुदा का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला से थर थर कांपते रहना, अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला कोई बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ है, बहुत ही डरावनी किस्म की चीज़ है, और उनका तसव्वुर जहन में बांधना कि भाई कितने, यानी चार पांच आंखें होंगी और जो है वो इस किस्म के सींग निकले हुए होंगे, और जो है वो अजीब गरीब किस्म के जो है ना वो जैसे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स होते हैं, ऐसे हाथ होंगे अल्लाह ताला के, और बहुत ही खौफनाक किस्म की कोई 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 शय होंगी, तो डरते रहना अल्लाह ताला से, ठीक है। या जो है ना वो क्या कहते हैं, शेर से जैसे डरते हैं कि भाई शेर जो है ना वो चीर फाड़ देगा, कभी वीडियो में देख लिया या कभी किसी को ऐसे ही देख लिया कि शेर आया उसने जो है ना वो उसको, यानी खाना शुरू किया, तो कोई कोई लिहाज किए बगैर ही खाना शुरू कर दिया, हर तरफ से जो है वो दांत मार मार करके उस बंदे को खत्म कर दिया। तो अल्लाह ताला नाउज बिल्ला इस किस्म की कोई चीज है जिस तरह शेर होता है, ठीक है, या कोई बहुत ही, यानी नाउज बिल्ला, ठीक है। तो क्या मतलब है अल्लाह ताला से डरने का? नहीं, अल्लाह ताला से डरने का हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तो हकीकत ये है कि अल्लाह ताला मोहब्बत का मंबा है, अल्लाह ताला तो मोहब्बत का मंबा है, यानी जहां से मोहब्बत आती है, निकलती है, ठीक है, जैसे कि किसी दरिया का मंबा होता है ना, जहां से वो दरिया शुरू होता है, ठीक है। तो मोहब्बत का भी जो दरिया है, ये ठाठे मारने वाला दरिया है, ये इसकी कोई कोई इसकी इसका सिरा नहीं है इस दरिया का, इस दरिया का, ठीक है। तो ये दरिया कहाँ से निकलता है? ये अल्लाह ताला की जात से निकलता है, अल्लाह ताला इतने मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह ताला इतने हसीन और जमील हैं, अल्लाह ताला इतने हसीन और जमील हैं कि दुनिया में हम जितना हुस्न देखते हैं, जितनी खूबसूरती इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं, चाहे किसी इंसान के अंदर वो खूबसूरती देखते हो, चाहे किसी किसी परिंदे के अंदर खूबसूरती देखते हो, राइट, एमेजोन फॉरेस्ट के जो परिंदे होते हैं, राइट, ये जो क्या कहते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट भी है, और ये इक्वेटर के ऊपर क्या एक और नाम होता है फॉरेस्ट का, इन जंगलों का, उनके अंदर जो 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 परिंदे हैं ना उनको पैराडाइज बर्ड्स कहते हैं, पैराडाइज यानी जन्नत के परिंदे, इतने खूबसूरत होते हैं कि इंसान उनको देख करके हैरान रह जाए, क्या खूबसूरती है ये। उसी तरह मछलियां, राइट मछलियां, कितनी खूबसूरत मछलियां होती हैं, आप किसी एक्वेरियम में जा करके जरा विजिट करें, एक से एक बढ़ करके खूबसूरत मछलियां होती हैं, क्या बेहतरीन रंग होते हैं, क्या बेहतरीन उनकी शक्लो सूरत होती है। ठीक है, तो ये जितनी खूबसूरती है मखलूक के अंदर, ये सारी की सारी खूबसूरती किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। ठीक है ना, इंसानों को भी अल्लाह ने बनाया, परिंदों को भी अल्लाह ने बनाया, जानवरों को भी अल्लाह ने बनाया, मछलियों को भी अल्लाह ने बनाया। ये जो नज़ारे हमें खूबसूरत नजर आते हैं, जो कि दिल को मोह लेते हैं, अपने हमारे दिल को अपनी तरफ खींच लेते हैं नज़ारे, ये किसने बनाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाए। तो जिसने ये सब कुछ बनाया, वो खुद कितना ज्यादा हसीन होगा, कितना ज्यादा खूबसूरत होगा, राइट? और फिर माँ की मोहब्बत से अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को समझाया कि जितनी मोहब्बत तुम माँ के अंदर देखते हो ना, उसको तुम 70 गुना, 70 गुना का मतलब ये नहीं होता कि मल्टीप्लाई बाय 70, नो, इट्स नॉट मैथमेटिकल, इट्स नॉट मल्टीप्लाई बाय 70, इसका मतलब होता है अरबी जुबान में 70 का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, और 700 का लफ्ज, ये बहुत ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी जिसको आप डिस्क्राइब ना कर सकें, जैसे उर्दू में बहतीरी कहते, बहुतेरे कह देते हैं, या दर्जनों कह देते हैं, या इस किस्म का कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? दर्जनों का मतलब ये नहीं होता कि मल्टीप्लाई बाय 12 या मल्टीप्लाई बाय 24, राइट, बल्कि इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा। ठीक है, तो माँ की मोहब्बत से बहुत ज्यादा मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला की है, तो फिर अल्लाह ताला से डरने का क्या क्या सबब बनता है? अल्लाह ताला से डरने का क्या क्या वजह बनती है अल्लाह ताला से डरने की? अल्लाह ताला से डरने की वजह ये बनती है कि अल्लाह ताला ने कुछ उसूल बना दिए हैं, अल्लाह ताला ने कुछ उसूल कवायद बना दिए हैं, और अल्लाह ताला ने खुद ये बता दिया है कि मेरे उसूलों को तुम तोड़ोगे, उनकी खिलाफ वर्जी करोगे, तो मैं सजा भी दूंगा, मैं सजा भी देता हूं। ठीक है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर बढ़ा दूंगा, लेकिन फौरन साथ फरमा दिया, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नेमतों का कुफ्र करोगे ना, उनको उनका शुक्र नहीं अदा करोगे, उन नेमतों को जो है वो तुम इग्नोर करोगे, उन नेमतों की तुम कदरदानी नहीं करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब भी बहुत शदीद है। तो ये ऐलान भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिए, अपने रसूल की जुबानी भी हमें अजाब की बहुत सारी तफसीलात बता दी कि जहन्नुम के अंदर क्या क्या होगा, कैसे कैसे अजाब होंगे, और अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारे वाकयात भी हमें बता दिए अपने अपने कलाम के अंदर, अपनी किताबों के अंदर, कि इंसानों के ऊपर अजाब आए भी हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं और आया वाया किसी के ऊपर अजाब नहीं, नहीं आए भी हैं अजाब। थोड़ा सा जरा होल्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए प्लीज। जज़ाकुमुल्लाह। तो अल्लाह ताला के खौफ का मतलब कि अल्लाह ताला ने खुद ही बताया है कि मेरे ये उसूल हैं, ये करोगे तो तुम्हें जजा मिलेगी, तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें फायदा होगा, और अगर फलाना काम करोगे जिसको कि मेरी नाफरमानी कहा जाता है, तो तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला से डरने का मतलब अल्लाह ताला के अजाब से डरना, अल्लाह ताला की नाराजगी से डरना। ठीक है, तो ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म फरमाया है कि मुझसे डरो, यानी मेरे अजाब से डरो। तो तरीका क्या है कि अल्लाह ताला के अजाब को सोचा करें। सोचा करें का मतलब क्या कि खुद से इमेजिन ना किया करें कि अल्लाह ताला का क्या अजाब है, अल्लाह ताला का क्या क्या वो है, बल्कि अल्लाह ताला के अजाब का इल्म हासिल करे, अल्लाह ताला के अजाब का इल्म हासिल करे, जो कि कुरान मजीद में मौजूद है, जो कि हदीस मुबारका में मौजूद है। ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे अल्लाह का अजाब होगा, ऐसी जहन्नुम होगी, जहन्नुम की ऐसी आग होगी। ठीक है, अल्लाह ताला के अजाब का एक तरीका ये भी है कि जो मेरे जिक्र से, मेरे मेरी मेरी याद से, मेरे ध्यान से यानी मुंह मोड़ता है, तो मैं उसकी जिंदगी को तंग कर देता हूँ, मैं उसकी जिंदगी को तंग कर देता हूँ, मैं उसकी जिंदगी को उसके ऊपर बहुत मुश्किल बना देता हूँ, तो ये भी तो अल्लाह ताला का अजाब है ना। ये अभी कब्र की बात नहीं हो रही, ये जहन्नुम की बात नहीं हो रही, ये तो इस दुनिया की जिंदगी की बात हो रही है। ठीक है, वमन युरिद अन जिक्र रब्बी फ क्या है वो, फन लहू मईशतन गम का, उसकी जिंदगी जो होती है ना वो तंग हो जाती है, गम का तंग हो जाती है। ठीक है, तो ये भी तो अल्लाह ताला का अजाब है ना, इससे डरना चाहिए। ठीक है, कि मेरी दुनिया की जिंदगी भी तंग हो जाएगी, और अजाब के अंदर जो कब्र के अंदर जाकर के अजाब होगा वो नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि कब्र जो है वो इंसान को भेंचेगी बहुत इस तरह से कि उसकी पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर पसलियां हो जाएंगी, और फिर कब्र के अंदर एक एक सांप होगा जो कि उसको डसेगा जो नमाज नहीं पढ़ता होगा। ठीक है, और कब्र के अंदर जो फरिश्ते हैं वो उसको गर्ज से यानी बड़े बड़े जो है ना वो हथौड़ों नुमा चीजों से इंसान को मारा करेंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के अंदर इन कब्र के अजाब का जिक्र है। ठीक है, फिर कब्र के अजाब की जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत सारी फिर वो ऐसे वाकयात भी दुनिया के अंदर दिखाते रहते हैं थोड़े थोड़े अरसे के ऊपर कि कब्र खुल गई और उसके अंदर जो है वो अजाब होता हुआ बाकायदा इंसानों ने भी देख लिया, जिंदा इंसानों ने भी देख लिया। तो कब्र का अजाब, ठीक है, इसकी तफसीलात हमें हदीस मुबारक से पता चलती हैं, और फिर उसके बाद कयामत के दिन की जो सख्तियां होंगी वो भी हदीस मुबारक के अंदर बहुत सारी उसकी तफसीलात आती हैं कि सूरज जो है वो सवा नेजे के ऊपर आया हुआ होगा, इतना करीब होगा, और जो है वो इंसान अपने पसीने के अंदर पूरे के पूरे खुद डूबे हुए होंगे, और वहां पे जिस किस्म की यानी मुश्किल होंगी कि जहन्नम के जो है ना वो शोले उड़ उड़ करके जो है वो वहां पर मैदान हशर के अंदर पड़ रहे होंगे, और कोई किसी को जो है वो पहचानने से इनकार कर देगा, भाई भी जो है वो मुंह मोड़ लेगा, माँ भी मुंह मोड़ लेगी, बाप भी मुंह मोड़ लेगा। ये सब की सब सख्तियां तंगियां क्या हैं, ये सारी की सारी मैदान हशर के अजाब हैं। ठीक है ना, मैदान हशर के अंदर ये सारा मामला होगा, वहां पर सवाब वाले भी होंगे जो कि अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, उनके साथ ये वाले मामला नहीं होंगे कि इधर से उधर भाग रहे हैं और भाई भी बात नहीं कर रहा और बहन भी बात नहीं कर रही और माँ भी बात नहीं कर रही और बाप भी बात नहीं कर रहा। ये लोग तो अर्श के साए के अंदर वीवीआईपी लाउंज के अंदर होंगे, इनको किसी के पास भागने की और दौड़ने की और किसी से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मैदान हशर का अजाब है। फिर उसके बाद जो है वो पुल सरात, कितनी सख्त किस्म की एक चीज है जो पुल सरात कहलाती है, जिसके ऊपर से हर एक ने गुजरना है, हर एक ईमान वाले ने गुजरना है। पुल सरात जो है ये काफिरों के लिए है ही नहीं, काफिरों का तो गुजर ही नहीं होगा पुल सरात के ऊपर से, वो तो डायरेक्ट जहन्नुम के अंदर चले जाएंगे बगैर पुल सरात के, वो तो अलग दरवाजे हैं जहन्नुम के जहां से काफिरों को डाल दिया जाएगा। तो पुल सरात किसके लिए है? पुल सरात तो है ईमान वालों के लिए, यानी कि जिनका खात्मा ईमान पर हुआ होगा उनके लिए ये पुल सरात है, जो कि तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है, और इसके ऊपर से कट कट करके जो है वो जहन्नुम के अंदर गिर रहे होंगे। इसका जिक्र कहाँ पर है? कुरान मजीद के अंदर पुल सरात का जिक्र है। ठीक है, तो ये सब का सब अल्लाह ताला का अजाब है। तो इसको ये जो हम पढ़ते हैं अपने कुरान मजीद में और हदीस मुबारका के अंदर जो हम इन चीजों के बारे में जानते हैं, तो इनको सोचा करे, क्या मतलब सोचा करे, इनको हंसी मजाक में नहीं समझा करे, इनको हंसी मजाक नहीं समझा करे, इनको नॉन सीरियसली नहीं लिया करे, इनको ये मत कि क्या करे कि ये तो बस ऐसे ही बस, यानी अल्लाह ताला ने नाउज़ बिल्ला सफ़े भरने के लिए सारी चीज़ें, राइट? जैसे कि इम्तिहान में बैठते हैं ना, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी होती है ना, तो फिर वो इम्तिहानी पेपर के ऊपर जो है ना वो कहानियां लिख करके आ जाते हैं, ताकि जो चेक करने वाला हो ना वो ऊपर से देखे और वो जो है ना बस समझे कि इसने तो बड़ा इतनी तीन चार चार कॉपियां लगाई हुई है इसने तो आंसर शीट की, ठीक है, और इसका मतलब है कि इसने बड़ा जबरदस्त काम किया होगा, जल्दी में जो है ना वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है ना वो इस तरह से कहानियां लिख करके आ जाते हैं इम्तिहानी पर्चे के ऊपर। तो क्या अल्लाह ताला ने अपने कुरान के औराक भरने के लिए किस्से कहानियां रखी हुई है उसके अंदर? क्या इस वजह से अल्लाह ताला ने ये किस्से कहानियां लिखी हुई हैं जन्नत के बारे में, जहन्नुम के बारे में, और फिरौन के बारे में, और नमरूद के बारे में, और हामान के बारे में, और दुनिया के अंदर जो दूसरे कौमों के ऊपर अजाब हैं, आद और समूद, कौम साले, कौम शुएब, राइट, फिरौन, इनके ऊपर जो अजाब हैं, ये किस्से कहानियां कुरान भरने के लिए अल्लाह ताला ने लिखे हुए हैं कि हम इनको बस पढ़ करके गुजर जाते हैं? नहीं, ये सब हकीकतें हैं, ये सब सच है। ठीक है, तो इस तरह का सोचना कि नहीं मैं कोई भी गुनाह कर रही हूं ना तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, गुनाह के बारे में कुछ नहीं होता, नहीं, ये आपके ईमान की नफी है अगर आप जो है वो ये सोच रही हैं या ये कह रही हैं कि गुनाह से कुछ नहीं होता, ठीक है, बल्कि इसके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब मिलता है, दुनिया में भी मिलता है और आखिरत के अंदर भी, अगर उसको माफ ना करवाया तो आखिरत के अंदर भी अजाब मिलेगा, ठीक है। तो ये है खौफ खुदा और उसका तरीका। और पीछे जैसे बयान में भी जुमे की बात हुई थी कि तौबा तो गुनाहों के ऊपर नदामत, ये तो पहली शर्त है तौबा की, लेकिन तौबा से पहले, गुनाहों से तौबा से पहले जो शर्त है वो कुरान के ऊपर ईमान लाना है, ईमान लेकर के आना। अगर ईमान नहीं है तो फिर गुनाहों के ऊपर नदामत और शर्मिंदगी कैसी, फिर वो वही नदामत और शर्मिंदगी होगी कि दुनिया वालों के सामने नदामत हो रही है, दुनिया वालों से शर्मिंदगी हो रही है। जैसे मेरे माँ बाप ने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत करी थी, ठीक है ना, माँ बाप ने मुझे जो है वो बड़ा अच्छा यानी शराफत सिखाई थी, और जो है ना वो बड़ी अच्छा जो है वो मेरा खानदानी माहौल था, और बड़े होकर के जो है ना मैंने अपने माँ बाप का मान नहीं रखा। ये फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं ना जिस तरह से, राइट, फिल्मों के डायलॉग्स, माँ बाप का मान नहीं रखा तो इस वजह से मुझे शर्मिंदगी है, इस वजह से मुझे नदामत है कि मैंने अपने अब्बा की नाक कटवा दी, मुझे, मैं बहुत नादिम हूं कि मैंने अपने अब्बा की नाक कटवा दी। आई कुड नॉट लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, आई कुड नॉट लिव अप टू देयर तरबियत। क्या ये तौबा है? नहीं, ये नदामत तो है लेकिन ये तौबा नहीं है, ये नदामत तो है लेकिन ये तौबा नहीं है, क्योंकि ये नदामत आखिरत के खौफ से नहीं है, ये अल्लाह के अजाब के खौफ की वजह से नदामत नहीं है, बल्कि ये दुनिया की वजह से नदामत है, चाहे दुनिया के खौफ की वजह से नदामत हो, चाहे दुनिया के सामने शर्मिंदगी की वजह से नदामत हो, अम्मी अब्बू के सामने शर्मिंदगी की वजह से भी तो नदामत होती है ना, वो तौबा नहीं होती, ठीक है। तो तौबा तो बाद में आएगी, पहले तो अल्लाह के कुरान के ऊपर यकीन हो ना, यानी मानता भी तो हो अल्लाह ताला के वादों को, अल्लाह ताला के जो वईदे हैं, अल्लाह ताला की जो बातें हैं, इनको तस्लीम करता है कि नहीं करता? ईमान ही नहीं है तो आगे जाके तौबा किस चीज की कर रहा है, किस बात के ऊपर तौबा कर रहा है, किसके सामने तौबा कर रहा है, ठीक है। तो खौफ खुदा और उसका तरीका, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आगे फरमाते हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद रखना और उसका तरीका। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम हक ताला की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, उम्मीद ऐसी चीज है जिससे नेक काम करने और तौबा करने की हिम्मत बढ़ती है, तौबा करने की हिम्मत बढ़ती है और नेक काम करने की हिम्मत बढ़ती है। क्या मतलब कि ये नहीं कि अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है तो तौबा नहीं करनी, नहीं, तौबा के बगैर यानी अल्लाह ताला की तरफ रुजू ही नहीं करना और गुनाहों के ऊपर जो है वो इसरार करना है, और अपने आप को जो है वो ये नहीं समझना कि जी मुझे अल्लाह ताला सजा देंगे, ये नहीं समझना, ठीक है, नहीं, बल्कि ये समझना कि अल्लाह ताला मुझे सजा देंगे अगर मैंने तौबा नहीं करी, ठीक है, लेकिन अगर मैं तौबा कर लूंगा तो अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे कि जाओ मैं तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करता, अब क्या मुंह दिखाने के लिए आए हो, जब सब कुछ कर लिया अब तौबा करने के लिए आए हो, नहीं, अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे, बल्कि अल्लाह ताला तौबा को कबूल कर लेंगे, ठीक है, अल्लाह ताला तौबा को रद्द नहीं करते, अल्लाह ताला तौबा को कबूल कर लेंगे, यह है उम्मीद, ठीक है। तो इस उम्मीद के ऊपर भी अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अहादीस मुबारका के अंदर हमें कितनी सारी बातें बताई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, कुल या इबादी, कह दीजिए कि ए मेरे बंदो, अल्लदीन असरफू अला अनफुसहिम, वो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर गुनाह कर कर के इसराफ कर लिया, जैसे इसराफ हम पढ़े ना सुने सूरह बनी इसराइल की तफसीर के अंदर, वला तो बजर तबजीरा वाले मौजू में इसराफ के बारे में पढ़ा था ना, फजूल खर्ची यानी हद से ज्यादा खर्च करना, उसको इसराफ कहते हैं। तो अल्लाह ताला वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अल्लदीन असरफू अला अनफुसहिम, यानी जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर हद से ज्यादा जुल्म कर लिया, गुनाह कर करके। ला तकनतु मिन रहमत अल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से तुम मायूस ना होना। इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं तौबा करने वाले के लिए, ठीक है। क्योंकि तौबा के बारे में फिर कुरान मजीद के अंदर और बहुत सारे मुकामात से और हदीस मुबारक से पता चलता है कि भाई तौबा करने के ऊपर अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, ठीक है। तो फिर ईमान वाले के लिए तो मायूसी की कोई कोई दरवाजा ही बाकी नहीं रह जाता, मायूसी की तो कोई जगह ही बाकी नहीं रह जाती। बस तौबा कर ले, बस तौबा कर ले, ठीक है। तौबा करने के बाद अगर दोबारा गुनाह भी कर रहा है तो फिर तौबा कर ले, अगर दोबारा गुनाह हो गया तो फिर तौबा कर ले। लेकिन अगर उसने दोबारा गुनाह ये सोच करके किया कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि उसने पहले जो चीज भी करी थी वो तौबा नहीं थी। जो चीज भी उसने पहले करी थी, जिसको ये तौबा समझ रहा था ना, वो तौबा इसने करी ही नहीं थी। क्योंकि जो तौबा कर लेता है वो इस बात पर तो यानी क्लियर हो जाता है कि ये गुनाह है और इसके ऊपर सजा मिलती है। अब ये शख्स इसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि आइंदा ये सोचे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जैसे पर्दे के बारे में पिछले दिनों बहुत बात हुई है कि कुरान मजीद की तफसीर पढ़नी शुरू कर दी और जो है वो बुर्का भी पहनना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन खानदान में शादी का वक्त था और उस दिन जो है वो बुर्का भी उतार दिया और गैर महरमों के सामने जो है वो बनठन करके चलना फिरना शुरू कर दिया, ये सोच करके कि आज खुशी का दिन है कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इसने बुर्का तो चढ़ा लिया था लेकिन इसने बेपर्दगी से तौबा नहीं करी थी। क्योंकि बेपर्दगी से अगर इसने तौबा करी होती तो ये कभी भी बुरका नहीं उतारती, कभी भी जो है बेपर्दगी नहीं नहीं करती गैर महरमों के सामने। अगर इसको डंडे से मार मार करके भी बेपर्दा कर दिया जाता तो ये कभी भी उस पर मुतमईन नहीं होती, कभी भी ये मैं नहीं सोचती कि कुछ नहीं होता। आज मेरे लिए इजाजत है बेपर्दगी करने की, ये कभी भी ये बात नहीं सोचती, बल्कि ये दिल ही दिल के अंदर रो रही होती। मुमकिन होता तो आंसुओं से भी रो रही होती, और अगर आंसुओं से रोना मुमकिन नहीं होता कि आगे से थप्पड़ पड़ेगा अगर आंसू देखे इसकी आंख में, शोर थप्पड़ मार देगा या कोई और जो है वो इसको और जलील कर देगा, तो दिल में तो जरूर रो रही होती। क्योंकि इसको पता है कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम है, इसने इसको तर्क किया है अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह के अजाब से बचने की खातिर इसने उसको तर्क किया है। अब जालिम ने इसको अगर दोबारा गुनाह के ऊपर मजबूर किया है तो ये खुश कैसे हो सकती है इस बात के ऊपर? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये खुश हो इस बात के ऊपर कि ये गुनाह के दोबारा से जो है वो गुनाह के ऊपर आ गई है, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है? किसी को अनक्लियर हो तो प्लीज कल को ये किसी को जवाब देंगी तो चलेगा नहीं है, जवाब के नहीं मुझे तो समझ में नहीं आई थी इस वजह से मैंने दोबारा ये हरकत कर ली थी, ठीक है। बार बार पूछ रहे हैं आपसे कि नहीं समझ में आया तो पूछें, ठीक है। फिर उसके बाद सबर और उसका तरीका, फरमाते हैं कि नफ्स को दीन की बातों का पाबंद रखना और दीन के खिलाफ इससे कोई काम ना होने देना, इसको सबर कहते हैं। दीन की बातों का पाबंद रखना और उसके खिलाफ दीन के खिलाफ इससे कोई काम ना होने देना, इसको सबर कहते हैं। और इसके कई मौके हैं। एक मौका यह है कि आदमी अमन व सलामती की हालत में हो, यानी बहुत से मौके होते हैं जिनके ऊपर सब्र करना होता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सब्र इतने सारे मौकों के ऊपर किया जाता है, और सब्र का मतलब दीन के ऊपर पाबंद रहना, यह है सब्र का मतलब, ठीक है ना। हमने तो सब्र का मतलब भी बिल्कुल कुछ और समझा हुआ है, जो कि इन तमाम मौकों से जो कि हजरत बयान फरमा रहे हैं उनमें से सिर्फ एक मौका है। हमने तो सिर्फ एक मौके को जो है ना वो कामिल सबर समझ लिया है, ठीक है। बहरहाल इसको जरा तवज्जो से सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए कि फरमाते हैं कि एक मौका खाली ये है कि आदमी अमन और सलामती की हालत में हो, यानी बिल्कुल नॉर्मल अच्छी जिंदगी गुजार रहा हो, अल्लाह ताला ने उसको सेहत दी हुई हो, मालो दौलत, इज्जत, आलो औलाद, घर बार, साजो सामान दिया हो, ऐसे वक्त का सबर यह है, यानी ये एक मौका है। इस मौके का सबर ये है कि आदमी माल दौलत की वजह से बिगड़ ना जाए, अल्लाह ताला को भूल ना जाए, गरीबों को हकीर ना समझे, उनके साथ नरमी और हुस्ने सुलूक करता रहे। ठीक है, इस मौके का ये सबर है। जैसे कि होता है ना, एक होता है शादी का मौका, एक होता है गम का मौका, एक होता है बच्चे की विलादत का मौका, एक होता है बच्चे को स्कूल में दाखिल करने का मौका, एक होता है वालिदैन की वफात का मौका। हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ मौके आते हैं ना, ठीक है ना? तो हजरत इसी तरीके से मौकों के ऊपर सब्र करना बता रहे हैं कि अमन व सलामती का जो मौका है ना, उसके अंदर ये सब्र है कि आदमी आपे से बाहर ना हो जाए और अल्लाह को भूल करके जो है ना, वो शैतान के रास्ते के ऊपर, जहन्नुम के रास्ते के ऊपर चलना ना शुरू हो जाए। ठीक है, दूसरा मौका इबादत का वक्त, कि उस वक्त नफ्स सुस्ती या कंजूसी करता है, जैसे नमाज के लिए उठते या ज़कात खैरात देने में। ठीक है, नफ्स जो है वो सुस्ती करता है, कंजूसी करता है, कि पढ़ सकता था ज्यादा नमाज लेकिन नहीं पढ़ रहा, बगैर किसी का हक मारे हुए, बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए हुए ये ज्यादा नमाज पढ़ सकता था लेकिन नहीं पढ़ रहा। ठीक है, या इसके पास इतना था कि ये जो है वो गरीबों के ऊपर खर्च कर सकता था बगैर कोई अपने और अपने घर वालों के लिए तंगी क्रिएट किए हुए, ये खर्च कर सकता था लेकिन कंजूसी कर रहा, नहीं खर्च कर रहा। ठीक है, ऐसे मौके पर तीन तरह का सब्र दरकार है। एक, इबादत से पहले कि नीयत दुरुस्त रखे। ठीक है, इबादत में नीयत सही होना चाहिए, ये भी सब्र है। ठीक है, नीयत को दुरुस्त रखना ये भी सब्र है। ठीक है ना, कभी हमने इसको सब्र की तारीफ में दाखिल किया, नीयत को सही रखना। ठीक है, हमारे लिए असल में उर्दू जुबान में भी ना बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनको के हम उनके साथ एक खास माना वाबस्ता हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, वो हम किसी लफ्ज को सुन करके जो है ना, चूंकि हमने उसके साथ बस एक माने को ही जोड़ दिया होता है, तो अब हम बाकी मफहूम को भूल जाते हैं। हालांकि उर्दू जुबान के अंदर जो बेशतर अल्फाज हैं ये अरबी जुबान के अल्फाज हैं। ठीक है, और अरबी जुबान के अंदर उस लफ्ज का माना जो था ना, वो बड़ा वसी माना था, लेकिन जब हम उसको उर्दू में लेकर के आए तो हमने उस माने को जो है ना, वो उसकी वसअत को छोड़ दिया और सिर्फ एक चीज के साथ उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे सबर का जो लफ्ज है उसको हमने सिर्फ रोने पीटने से अपने आप को बचाना, अपने आप को रोकना, हमने सबर को सिर्फ इसमें, हालांकि अरबी के अंदर सबर का मफहूम तो बहुत कुछ था। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा हल साजिश के जहन में अभी आया है, वो ये है कि ये जो है ना, इबादत से पहले नीयत को दुरुस्त रखना ये भी सबर है। ठीक है, तो या तो हम आसान रास्ता इख्तियार करें कि हम यहाँ पर ना इस्तेकामत का लफ्ज भी साथ इस्तेमाल कर लें। इस्तेकामत, उर्दू में इस्तेकामत जो है ना, वो इस माने में ज्यादा इस्तेमाल होता है कि अपने आप को जमा करके रखना किसी नेकी के ऊपर, वहां पर यानी भलाई के काम के ऊपर, खैर के काम के ऊपर जमा के रखना। उसके लिए हम सबर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते उर्दू में, हम उसके लिए इस्तेकामत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सब्र और इस्तेकामत जब भी उर्दू के अंदर ये साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, या हम ये करें जो कि ज्यादा अच्छा काम है। ठीक है, वो क्या कि हम अपने जहन को जो है ना, वो अब अरबी की तरफ माइल करें। अरबी में जो मफहूम है, जो कि असल मफहूम होते हैं किसी लफ्ज के, उर्दू का जो अरबी से आया हुआ लफ्ज है ना, उसका असल मफहूम तो अरबी के अंदर है, तो हम अपने जहन को भी अरबाइज करना शुरू करें, यानी अरबी अरबी तरफ डालना शुरू करें, माइल करना शुरू करें, और ये बड़ा फायदे वाला काम है। छोटे फायदा वाला काम ये हो गया कि हमने इस्तकामत के लफ्ज को ले आए, ठीक है ना, जो कि उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है, तो हम उसको ले आए, आसानी से मसला समझ में आ गया, वो भी ठीक है, लेकिन वो छोटा छोटा फायदा है। बड़ा फायदा तो अरबी की तरफ लौटने में है, क्योंकि असल जुबान है ही अरबी। इवन बनी आदम की असल जुबान जो है वो अरबी है, और मुसलमान के लिए असल जुबान, क्योंकि वो कुरान मजीद की और नबी अलैहिस्सलाम की जुबान है और जन्नत की जुबान है, तो मुसलमान के लिए तो हर जमाने में अरबी जुबान ही असल रहेगी। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा, फरमाते हैं कि फिर इबादत के मौके पर तीन तरह का सब्र दरकार होता है। पहला सब्र इबादत से पहले वाला, कि नियत दुरुस्त रखे, यानी अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, यही नियत इबादत के लिए, बल्कि हर काम के लिए यही नियत इंसान की होगी तो उसको फायदा होगा। अल्लाह ताला ही के वास्ते वो काम करे, नफ्स की कोई गर्ज ना हो, ठीक है। ये तो नियत वाली बात हो गई, जो कि अमल के लिए शर्त है, अमल की मकबूलियत के लिए शर्त है। इन्नमल आमालो बिन्नियात, के आमाल की मकबूलियत तो नियत के ऊपर ही डिपेंड करती है, दारो मदार उसका नियतों पर है। दूसरे, इबादत के वक्त, यानी जिस वक्त ये इबादत कर रहा है, इबादत के दौरान कि कम हिम्मती ना हो, ठीक है, जिस तरह उस इबादत का हक है उसी तरह से अदा करे, ठीक है। खुसूसा नमाज के अंदर जैसे जैसे सुन्नत तरीके से नमाज अदा करना हमें सिखाया गया है, तो हम उसी तरह से नमाज अदा करें। उसके अंदर जो है ना, वो यानी बिल्कुल लागर तरीके से और बिल्कुल बेध्यानी के साथ और बिल्कुल ये जो है वो, यानी जिसको कहते हैं ना मारे बांधे की नमाज पढ़ना, और जिस तरह से बस सर से उतारना और बस जान छुड़ाना, है ना। मुसल्ले के ऊपर आए हैं तो एक मुसीबत है कि मुसल्ले पर क्यों हूं मैं, राइट, और जल्दी से बस निपटा करके जो है वो मुसल्ले से उछल जाना, बिल्कुल अपने आप को यानी स्प्रिंग आउट कर लेना मुसल्ले के ऊपर से। ऐसे नमाज ना पढ़े, बल्कि तादील के साथ नमाज पढ़े, ठीक है, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़े। कोशिश करे बेशक उसका ध्यान जो है वो उस वक्त नमाज के अंदर ना लगे, लेकिन अपने जो आज़ा हैं, जो अपने यानी जो हरकात हैं, वो तो सही तरीके से करें ना, ठीक है। जहन के ऊपर जो जो दूसरी चीजें सवार हुई हुई हैं, तो उनको अब निकालना इतना आसान काम नहीं होता कि आप बस अल्लाह अकबर बांधें और आपका जहन जो है ना वो पूरी दुनिया से कट करके बस जन्नत में पहुंच जाए। नहीं, ये इस तरह से नहीं होता। इसके लिए तो बाहर मेहनत करनी पड़ती है, अपने माहौल को अच्छा बनाना पड़ता है, अपनी सोचों को अच्छा बनाना पड़ता है, अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के नमाज के अंदर ध्यान बनता है, ठीक है। लेकिन ध्यान बनना जो है ना, इसकी ये तो एक एडवांस लेवल है, यानी एक बड़ा आगे जाकर के काम होता है। शुरू में इंसान को क्या करना होता है, अपने हरकात और सकनात को जो है वो सही करना होता है, कि सही जैसे सुन्नत तरीका है तकबीर करने का, सुन्नत तरीका कैसे हाथ उठाने हैं, कैसे हाथों को बांधना है, मर्दों का थोड़ा सा मुख्तलिफ है, औरतों का थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तिलावत करनी है, वो तिलावत सही तजवीद के साथ तिलावत कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो रुकू, सही तरीका जो सुन्नत सहाबियात का तरीका है, वैसे खवातीन जो है रुकू करें। फिर उसके बाद वैसे जो है वो सुन्नत तरीके से जो है वो सजदा करें, ठीक है। तो और अच्छा, कहाँ पर निगाह रखनी है, जब खड़ी हुई हैं कयाम की हालत में तो निगाह कहाँ होनी चाहिए, रुकू की हालत में निगाह कहाँ होनी चाहिए, सजदे की हालत में निगाह कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, ये इंसान यानी ये जाहिरी चीजें, और नमाज का इब्तदाई खुशू व खुजू जो है वो यही है, ठीक है। इसी से जब इंसान शुरू करता है ना, तो फिर बिलाखिर उसका ध्यान नमाज के अंदर बन जाता है, ठीक है। तो जाहिरी अफाल जो है नमाज के, और जो कुरान मजीद और दुआएं वगैरह जो पढ़ी जाती हैं वो अच्छे से पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो अरबी जुबान सीखती चली जाएगी, मानी उसको आते चले जाएंगे, तो पढ़ने के दौरान कोशिश करे कि वो मानी भी कुछ उसको समझ में आ रहे हो, ठीक है। ये इबादत के दौरान का सबर है, ठीक है। तीसरा क्या, कि इबादत के बाद किसी के सामने उसका जिक्र ना करे। जिक्र ना करे का मतलब यहां पर क्या है, कि जतलाए नहीं, ठीक है, कि मैंने बड़ी इबादत करी है, वो मैंने जो है वो ऐसा किया, जतलाने की नीयत से नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे पूछे कि भाई आपने नमाज पढ़ ली है, तो आप कहेंगे नहीं मैंने नहीं पढ़ी है। भाई पढ़ ली है तो बता दें कि हाँ मैंने पढ़ ली है, ठीक है। या अपने बच्चों को बता दें कि हाँ बच्चे बेटा आप नमाज पढ़ लीजिए, अम्मी ने तो पढ़ ली है। ये इससे मना नहीं किया जा रहा है, ठीक है। किस चीज से मना किया जा रहा है, जतलाने से, ठीक है ना, टू ब्रैग अबाउट योर इबादत, ठीक है। इसको अंग्रेजी में ब्रैग करना कहते हैं, जतलाना, ठीक है, यानी नाज करना और जो है वो किसी के ऊपर एहसान जताना कि मैंने जो है वो फलाना काम इबादत का कर लिया है। ठीक है, तो ये इबादत के बाद का सबर है। तो इबादत के मौके के अंदर तीन सबर के टाइम होते हैं, एक इबादत से पहले का, एक इबादत के दौरान का, और एक इबादत के बाद का। ठीक है, माशाल्लाह, सबर के अंदर क्या क्या तफसीलात हैं। फिर उसके बाद तीसरा मौका गुनाह का वक्त है, तो उस वक्त का सबर यह है कि नफ्स को गुनाह से रोके। ठीक है, यानी गुनाह का कोई मौका सामने आ गया, किसी ने जो है वो टीवी चला दिया, किसी ने म्यूजिक चला दिया, किसी ने जो है वो गंदी बातें शुरू कर दी, डर्टी जोक्स शुरू कर दिए, किसी की गीबत शुरू कर दी, ठीक है ना, तो ऐसे मौके के ऊपर जो है वो अपने आप को गुनाह से बचाना, ये गुनाह के मौके का सबर है। ठीक है, आंखों को गुनाह से बचाना, कानों को गुनाह से बचाना, जुबान को गुनाह से बचाना, ठीक है, अपने तमाम आज़ाओ जवारे को गुनाह से बचाना, ये गुनाह के मौके वाला सबर है। चौथा मौका वो वक्त है कि जब इस शख्स को कोई मखलूक तकलीफ पहुंचाए, ठीक है, किसी मखलूक से इसको तकलीफ पहुंचाए, जैसे कोई बुरा भला कहे, उस वक्त का सबर ये है कि बदला ना ले, खामोश हो जाए, बदला ना ले, खामोश हो जाए। ठीक है, ये मखलूक की तरफ से तकलीफ पहुंचने के मौके का सबर। ठीक है, बदला लेना अगरचे कि इसकी इजाजत है, लेकिन सिर्फ इतनी जितना कि उसने आपके साथ बुरा किया है। ठीक है, लेकिन कैसे आप ये कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितना बुरा किया है आपके साथ, और जिस वक्त आप उससे बदला लेने के लिए जाएंगे, तो आप कैसे अपने आप को उससे ज्यादा बढ़ जाने से रोकेंगे, कैसे? तो खुद से जो बदला लेने का जो अमल है ना, ये इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। इस वजह से मशायख फरमाते हैं कि बदला ना लो। ठीक है, लेट समवन एल्स टेक रिवेंज ऑन योर बिहाफ, किसी दूसरे को लेने दो बदला अपनी तरफ से। मतलब ये कि नहीं कि दूसरे को पैसा दे करके कहो कि अच्छा अब तुम जाकर के मार दो, इसका मतलब ये है कि दूसरे को बदला लेने दे, खुद बदला ना ले, नहीं, बल्कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो जो जज है ना, कोर्ट, इस्लामी शरी कोर्ट हो या इवन जो रेगुलर कोर्ट होती है, तो उसके ऊपर ये मामला छोड़ दें, मुकदमा के किसी की तीसरे शख्स के पास मुकदमा ले जाए। ठीक है, और फिर वो जो तीसरा शख्स है ना, वो फिर कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास इल्म है, जिसके पास तहमुल है, जो कि आपका यानी आपका साइड ना लेता हो, एक एक गैर जानबदार शख्स हो। ठीक है ना, अब वो जब बदला लेगा ना, तो वो हद से तजावुज नहीं करेगा, बल्कि वो अपने इल्म और अपने यानी समझ के मुताबिक आपकी तरफ से बदला लेगा। ठीक है, तो जब इस किस्म का इशू हो ना, तो खुद बदला ना ले, या तो माफ कर दे, बिल्कुल ही माफ कर दे, या ये कि तीसरे शख्स के पास जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके घर के अंदर आपके बच्चों में लड़ाई हो गई, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया, ठीक है ना, तो उस बच्चे ने क्या किया, खुद से बदला ले लिया। ठीक है, तो आपके पास जब ये केस आएगा, पहुंचेगा जब आपके पास ये मामला, तो आप क्या कहेंगे उसको कि तुमने खुद क्यों बदला लिया, मेरे पास क्यों नहीं आई, मेरे पास क्यों नहीं आए? ठीक है ना, मैं आपकी तरफ से फिर कुछ कर लेती, उसको पनिशमेंट दे देती या उसको समझा देती, आपने खुद जो बदला लिया है ना, ये आपने बड़ा गलत काम किया, क्योंकि उसने तो आपको एक लगाई थी, आपने जो है वो दो लगा दी, फिर आगे से जाहिर है उसने फिर तीन लगा दी, फिर आगे से आपने चार लगा दी, इस तरीके से जो है वो एक हंगामा शुरू हो गया घर के अंदर, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद शुरू हो गया। जिस तरह बच्चों को ये एडवाइस करती है ना, ये उसको पाबंद करती है ना कि अम्मी के पास लेकर के आना था, खुद से नहीं बदला लेना था, क्योंकि जब तुमने खुद बदला लिया तो तुम हद से आगे बढ़ गए हो। तो बिल्कुल यही मामला जो है वो हमारे साथ भी है। ठीक है, कि भाई आप या तो माफ कर दें, या ये कि किसी ऐसे शख्स के पास जाएं जो कि अम्मी की हैसियत रखता हो या अब्बा की हैसियत रखता हो। ठीक है, खुद करोगे तो फिर नुकसान ही उठाओगे। पांचवा मौका मुसीबत, बीमारी और माल के नुकसान या किसी अजीजों करीब के मर जाने का है। यानी ये क्या है, ये वो तकलीफ जो कि मखलूक की तरफ से नहीं पहुंची, बल्कि खालिक की मर्जी से पहुंची है, खालिक की मर्जी से पहुंची है। जैसे बीमारी जो है ना, ये आम तौर पर ऐसा तो नहीं होता कि कोई आपको आके वायरस का इंजेक्शन लगा देता है, किसी बीमारी का इंजेक्शन, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, कभी ये किसी मखलूक ने आपको इंजेक्शन लगा करके बीमार कर दिया, तो वो एक एक्सेप्शन होती है। लेकिन उम्मीद तौर पर बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, ठीक है, कि भाई वायरसेस तो हर जगह हैं, लेकिन कोई वायरस उसकी तवज्जो आपके ऊपर पड़ गई, राइट, और वो वायरस साहब जो है वो आपके अंदर घुस गया, आप बीमार पड़ गए। तो ये अल्लाह की मर्जी के बगैर तो वायरस आपके अंदर नहीं घुस सकता, ठीक है। माल का नुकसान, कि भाई किसी चोर साहब जो थे वो वैसे तो अपने रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन एकदम से उन चोर साहब की जो है ना वो दिल में अल्लाह ताला ने ख्याल डाल दिया कि इनके घर पे जरा आप विजिट करते चले जाएं, ठीक है, तो वो आपके घर पे थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले आए और आपको जो है वो माल वाल से फारिग करके चले गए। तो ये अल्लाह ताला ने उस चोर के दिल के अंदर बात डाल दी। अब वो चोर साहब तो गए, वो तो आपके हाथ में नहीं आ रहे, तो ये फिर मुसीबत कहाँ से पहुंची? ये अल्लाह ताला की मर्जी की वजह से मुसीबत पहुंची, ठीक है। या कोई अजीज वकारिब मौत हो गया, तो भाई मौत तो एक ऐसी चीज है जो कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ही खालिसतन रखी हुई है, ठीक है। तो उस वक्त का सबर क्या है? उस वक्त का सबर ये है कि जुबान से खिलाफ शरा कोई कलमा ना कहे, चीख चीख कर ना रोए। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है कि कपड़े फाड़ना और सर बैन करना और बाल नो जो है ना वो उनको खींचना और ये इस किस्म की चीजें, जैसे कि बाकायदा उस जमाने में लोग करते भी थे और हायर करके भी करते थे, यानी बैन करने वालियों को जो है ना वो पैसे दे करके बुलाया जाता था कि अब चलो जी बैठ करके इस घर के अंदर बैन करो, रो धो मारो पीटो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो शरीयत के अंदर हराम कर दी गई। तो ये पांच मौके हैं जिनके ऊपर पांच मुख्तलिफ तरीकों से सब्र करना सिखाया गया। सब्र के हुसूल का तरीका ये है कि इन सब मौके में सब्र के सवाब को याद करे और ये सोचे कि बेसब्री करने से तकदीर तो नहीं टलती, तो फिर सब्र का सवाब क्यों जाया किया जाए, ठीक है। मुसीबत तो टलनी नहीं है, वो तो आ चुकी, तो अब इसका सवाब क्यों जाया किया जाए? और सवाब कितना है सब्र का, ये भी कुरान मजीद के ऊपर जिसको एतमाद होगा वो इस सवाब को फिर याद रखने की कोशिश भी करेगा। इन्नमा युवफ्फा सबिरून अजरहुम बगैर हिसाब। अल्लाह ताला क्या फरमाया कि सबर के अजाब जो है वो कितना है? बगैर हिसाब के, यानी इतना इतना सवाब है उस शख्स के लिए जो कि सबर करता है, कि जिसका कि वो हिसाब ही नहीं रख सकता, ठीक है ना। अल्लाह ताला के लोहे महफूज के अंदर तो हर चीज का हिसाब है, लेकिन जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है ना तो वो हमारे लिए काउंट करना मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए उसका हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इतना सवाब मिलेगा, ठीक है। तो सबर नहीं किया तो सोचें कि कितना नुकसान कर लिया अपना, है ना। कोई आपसे आके कहे कि जी मैं आपको $1 मिलियन दे रहा हूं, तो उस वक्त आप जो है ना वो आपको उसकी आवाज नहीं आई और आप उसकी आवाज क्योंकि समझ नहीं सके कि वो आपको $1 मिलियन देना चाह रहा है और आपसे कह रहा है कि बस इस कागज पे साइन कर दो, मैं तुम्हें $1 मिलियन लाके दे दूंगा, आपको आवाज नहीं आई और आप जो है ना वो इग्नोर करके आगे बढ़ के, पता नहीं कौन है क्यों, मैं तो खामखा किसी ऐसे शख्स से क्यों बात करूं, आप आगे बढ़ गई। बाद में जब आपको पता चलेगा कि भाई वो कोई आपसे कुछ नहीं चाहता था, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ आपको $1 मिलियन देने थे, एंड यू जस्ट लॉस्ट इट, आपने बस ये मौका गंवा दिया, उस वक्त सोचे कितना आपको अफसोस होगा, है ना। और वो भी उस तो उस वक्त के जबकि आपको शदीद जरूरत थी $1 मिलियन की, ठीक है ना, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, आपने जाना न जाने जो है पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें करी हुई थी, अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी को जो है वो जेल से निकलवाने के लिए, किसी की जो है वो दूसरी इलाज करवाने के लिए आपको $1 मिलियन चाहिए थे, आपको पता चला कि सिर्फ आपको आवाज नहीं आई, इस वजह से आपने ये मिस कर दिया, आप सोचे कितना कितना अफसोस होगा, कितनी हसरत होगी इसके ऊपर। तो कयामत के दिन तो हमें अजरो सवाब की कितनी जरूरत होगी, है ना, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए कितनी जरूरत होगी। फिर जब अगर जन्नत में पहुंच भी गए, अब जन्नत में जाके देखेंगे फलाना शख्स सबर करके पता नहीं कौन से वाले लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ है, और फलाना शख्स सबर करके उसने सबर किया था वो उस लेवल पे पहुंचा हुआ है, उधर पहुंचा हुआ है, और मुझे इतने सारे मौके मिले थे कि मैं सबर कर सकती थी, लेकिन मैंने उनको गंवा दिया। अब मैं जो हूं ना बिल्कुल ही जन्नत के जो है ना वो बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो उस वक्त भी एक हसरत होगी, क्योंकि जन्नत में इन चीजों की तो हसरत होगी, ठीक है, कि अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ये नहीं किया, किया होता तो हम उधर उधर होते। ठीक है, बाकी कोई हसरत नहीं होगी कि भाई खाने के लिए कुछ कम मिल रहा है, पीने के लिए कम मिल रहा है, कपड़े जो है वो कम मिल रहे हैं, ये इस किस्म की हसरतें नहीं होंगी, लेकिन ये तो होगा ना कि कर लेते तो उधर होते। तो पहली बात तो कि पहुंचने का मसला, फिर उसके बाद जो है पहुंचने के बाद भी जो है मसला, तो सबर ही कर लिया जाए भाई, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मशायख को अल्लाह ताला हमारी तरफ से बेहतरीन जजा दे कि हम तो खाली समझ रहे थे कोई मरेगा तो सबर करेंगे, अब मर के कोई नहीं दे रहा हमारे खानदान के अंदर, तो सबर का जो है वो सवाब ही नहीं मिल रहा हमें, राइट। कोई मर के ही नहीं दे रहा, सबर का सवाब ही कोई नहीं मिल रहा, ठीक है ना। अब ये भी तो एक शैतान दिल में ख्याल डाल सकता है ना, कोई मरे तो मैं सबर करूं, नहीं मरने की जरूरत ही कोई नहीं किसी के, ठीक है ना। बीमारी के ऊपर सबर हो रहा है, किसी मखलूक ने कोई तंज वाली बात कह दी, सास साहिबा ने कुछ कह दिया, बहू साहिबा ने कुछ कह दिया, आ रही है आगे बहू वाली क्लास में, अभी तो पहले काफी देर हो गई एक्चुअली उस क्लास को शुरू करने में। बहरहाल तो ये सारी जो घर के रोजाना के मामला होते हैं, शोहर साहब जो है वो लिफ्ट नहीं करा रहे, और उन्होंने फलानी चीज कह दी, और फलाने ने फलानी चीज कह दी, ओहो माशाल्लाह रोजाना कितने मौके मिल रहे हैं सबर करने के, ठीक है। फिर उसके बाद माशाल्लाह इबादत कर रही हैं, नमाजें पढ़ रही हैं, सदका खैरात कर रही हैं, उसके अंदर सबर के कितने मौके मिल रहे हैं, ठीक है। और सबसे बढ़कर तो कि जब सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल आम हालात चल रहे हैं, औलाद भी जिंदा है, सब जिंदा है, तो भाई उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। यानी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना अपनी औलाद को देख करके, औलाद को घर के अंदर हंसता हुआ देखें, खुश देखें, उसी वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने जो है वो गमों से हमें बचाया है, अल्लाह आपने उन अजियतों से बचाया है जिन अजियतों के अंदर दुनिया के अनगिनत लोग मुब्तला हुए हुए हैं। मेरे घर के अंदर जो ये खुशी की आवाजें बुलंद हो रही हैं, बच्चों के हंसने की आवाजें बुलंद हो रही हैं, ये अल्लाह ये आपका एहसान ही तो है मेरे ऊपर, आपका मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर एहसान ही तो है आपका अल्लाह, हम कोई डिजर्व तो नहीं करते थे ये, हम भी तो जो है वो गजा की गलियों के अंदर मारे मारे फिर रहे होते, सर्दी के अंदर हमारे ऊपर सर के ऊपर कोई सायबान ना होता, है ना, दुश्मन की गोलियों से बचाने के लिए हमारे पास कोई निगेबान ना होता, तो हम क्या कर लेते, क्या कर लेते हम। तो शुक्र अदा करना ये भी तो सबर है, ये भी तो सबर की एक शाख ही है के नेकी के ऊपर शुक्र करना, क्योंकि शुक्र करना तो सबसे बड़ी नेकी है। नेकी के ऊपर इस्तेकामत, शुक्र के ऊपर इस्तेकामत, ये सबर की कितनी आला शक्ल है कि इसके अंदर सबर भी है, इसके अंदर शुक्र भी है। हम तो इन दोनों चीजों को अलग अलग समझते हैं ना, कि कोई मौका होगा शुक्र करने का, कोई मौका होगा सबर करने का, नहीं, शुक्र करना भी सबर है, शुक्र करना भी सबर का ही एक बाब है, का ही एक चैप्टर है, ठीक है ना। अल्लाह ताला हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह को करोड़ों नेकी अता फरमाए, उनकी कब्र को हमारी तरफ से बेहतरीन अजर सवाब से मजीद भर दे, कि उन्होंने क्या क्या चीज हमारे सामने खोल दी, क्या नुक्ता हमारे सामने खोल दिया, राइट। अगर वो ना खोलते अल्लाह की मर्जी से, और ये सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी से हुआ, लेकिन अल्लाह ने किसको सबब बनाया, हमारे इन मशायख को सबब बनाया, राइट। हमारा तो रुआ रुआ इन मशायख का एहसान मंद होना चाहिए, रुआ रुआ इन मशायख का एहसान मंद होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी तरफ से तो बेहतरीन जजा खैर फरमाए, वाखिर रबिल आलमीन। थोड़ी सी ब्रेक के बाद फिर हम मिसाली बहू की क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह।